अगला दिन भी यूं ही शुरू हुआ। शान के घर में सब खाना खाकर अपने अपने काम पर निकल गए। आज फिर अंशिका सुभाष जी के साथ थी और दोनों कलरिंग कर रहे थे। अर्पिता जी उसको बताकर आरवी के घर के लिए निकल गईं। दूसरी तरफ आरवी के घर पर सुबह से काफी चहल पहल थी। आज उसकी मेहंदी थी और उसके लिए रश्मि उसको तैयार कर रही थी। हालांकि दोनों दोस्तों का दिल नहीं था, पर मजबूरी थी। कुछ देर में सब तैयारियां हो गईं। नीचे गाना बजाना, ढोलक की थाप पर नाचना शुरू हो चुका था। अर्पिता जी की वजह से यहाँ से सारा काम आराम से संभल गया था। अर्पिता जी भी वहाँ पहुँच गईं और मेहंदी का फंक्शन शुरू हुआ। रश्मि तो अपना दिल मारे वहाँ बैठी हुई थी, पर वो इतने गुस्से में थी कि उसने मेहंदी लगवाने से साफ इनकार कर दिया। वहीं आरवी नम आँखों से अपनी हथेली पर मेहंदी लगते देख रही थी। जैसे ही मेहंदी वाली ने इससे उसके होने वाले पति का नाम पूछा, वो सोच में पड़ गई। पति शब्द सुनकर उसको कुछ अजीब फील होने लगा, जैसे वो किसी पिंजरे में कैद होने वाली हो, जहाँ से उसका बाहर निकल पाना असंभव हो। उसका दम घुटने लगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, पर रश्मि ने झट से कहा, एस लिखिए, एस से शुरू होता है मेरे जीजू का नाम। जैसे ही आरवी के कानों में उसकी आवाज़ पड़ी, उसने हैरानी से उसे देखा, तो रश्मि ने चिढ़कर धीमी आवाज़ में कहा, मैं उस हरामखोर को तेरे इर्द गिर्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर उसका नाम तेरी हथेली पर लिखने कैसे दे सकती हूँ। इसलिए तेरी हथेली पर एस लिखेगा, शिव के नाम का एस। वैसे भी तू उन्हें बहुत मानती है, तो उन्हीं के नाम की मेहंदी लगवा ले, शायद वो तेरे लिए अपना ही प्रतिबिंब भेज दे। आरवी ने अपनी नज़रें उस पर से हटा लीं। रश्मि सारा वक्त उसके साथ रही, उसके खाने पीने का ध्यान रखती रही। धीरे धीरे सबको मेहंदी लग गई। शाम होते होते सब लेडीज संगीत की तैयारी में लग गए। अर्पिता जी कल आने का कहकर वहां से निकल गई। रात का समय था, आज सुयश जी नज़र नहीं आ रहे थे। बस अर्पिता जी, अंशिका और शान ही मौजूद थे वहां। शान अंशिका को खाना खिला रहा था, तभी उसके कानों में अर्पिता जी की आवाज़ पड़ी, शान आप तुम्हारे चाचा जी को पार्टी के काम से जाना पड़ा, वो कल नहीं आ सकेंगे और कल शादी है। अगर कल भी हम अकेले जाएंगे तो शायद अच्छा ना लगे, तो क्या आप थोड़ा वक्त निकालकर हमारे साथ आ सकते हैं, बस थोड़े देर के लिए। उनकी बात सुनकर शान के आगे बढ़े हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए। उसने हैरानी से उन्हें देखा, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा बड़ी माँ? बेटा चल लीजिए ना हमारे साथ, हमें कल भी वहाँ अकेले जाना अच्छा नहीं लगेगा, बस गिफ्ट देकर घर वापस आ जाएंगे, हमारे लिए चल लीजिए, उन्होंने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, जो कि शान को अच्छा नहीं लगा। उसने विनम्रता से कहा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ बड़ी माँ, आपको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, आपके लिए मैं कल आपके साथ चलूँगा, बस थोड़े देर के लिए, फिर मैं वापस आ जाऊँगा, वरना अंशिका को अकेले रहना पड़ेगा। अर्पिता जी बेहद खुश हो गईं। अगले दिन शान शाम को जल्दी आने वाला था, आखिर शादी शाम की ही थी। वहीं आरवी के घर पर आज बहुत चहल पहल थी। सुबह से शादी की तैयारियां और छोटी मोटी रस्मों को निपटाने का काम चल रहा था। दोपहर के बाद ब्यूटिशियन भी आ गई थी और आरवी को उसकी शादी के लिए तैयार करने का काम शुरू हो गया था। रश्मि भी वहीं थी और अब उसका दिल घबरा रहा था। शाम के 7 बज रहे थे, मेहमान तैयार होने में बिजी थे, कुछ तो वेन्यू पर पहुंच चुके थे, खासकर आदमी। रश्मि तैयार हो गई थी और नीचे अनुपमा जी की मदद करवा रही थी। हालांकि वो अब भी चाहती थी कि किसी तरह ये शादी टूट जाए, पर उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से आरवी ने उसको अपनी कसम दे दी थी कि वो कुछ हंगामा नहीं करेगी, इसलिए बेचारी मजबूरी में शांति से अपनी दोस्त की जिंदगी को नर्क बनते देख रही थी। आरवी ने तो अपने आंसुओं को कैसे रोका था ये वही जानती थी, क्योंकि अभी उसका मन कर रहा था कि खूब रोए, पर मजबूर थी कि रो भी नहीं सकती थी। अनुपमा जी आज बहुत खुश थी, आखिर उनकी इकलौती बेटी की शादी थी, जिनके उन्होंने बहुत से सपने सजाए थे। बारात 10 बजे आने वाली थी। मुंबई में ही जुहू बीच के पास बने एक बड़े से बंगले को दुल्हन की तरह सजाया गया था। खूब सारे लोग वहां मौजूद थे। बारात के निकलने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। आशिमा जी, मतलब विहान की माँ, ने एक आंटी को ऊपर भेजकर उसे बुलाने को कहा, तो वो बुजुर्ग औरत ऊपर चली गई। उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उन्होंने 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाया, पर कोई आवाज़ नहीं आई। अब उन्होंने दरवाज़ा को हल्के से अंदर की तरफ धक्का दिया, तो दरवाज़ा खुल गया। आंटी ने अंदर सब जगह देखा, पर वो कहीं नहीं मिला। उसके बाद ये खबर एक आग का तरह फैलाने लगी, लड़का गायब है। वहीं आरवी के घर में बारात के स्वागत की लगभग सभी तैयारियां हो चुकी थीं। आरवी अकेली कमरे में बैठी थी, अचानक ही एक तेज रफ्तार गाड़ी उनके घर की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। वो गाड़ी उनके घर के गेट के पास आकर झटके से रुकी और एक लड़के ने उस गाड़ी से बाहर कदम रखा। उसने लाइट येलो कलर की शेरवानी पहन रखी थी, हथेली पर मेहंदी लगी हुई थी और गोरा चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया था। आंखों में गुस्से की ज्वाला धधक रही थी और उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसा हुआ था। वो गाड़ी से बाहर निकला और तेज कदमों से गेट की तरफ बढ़ गया। वो लड़का वहां से गुस्से में दनदनाते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वहां मौजूद औरतें हक्की बक्की ये देखती ही रह गईं। कुछ ने उसे रोकना चाहा, पर उसके गुस्से के आगे कोई टिक ना सका। वो आरवी के रूम के बाहर पहुंचा। ठीक इसी वक्त किचन से रश्मि और अनुपमा जी ने बाहर कदम रखा। सभी औरतें बातें करते हुए आरवी के कमरे की तरफ देख रही थी तो उन दोनों की भी नजरें उस तरफ घूम गई। रश्मि ने जैसे ही लड़के के बैक व्यू को देखा उसके मुंह से धीरे से निकला, विहान। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वहीं अनुपमा जी ने नीचे से ही आवाज लगाई, विहान बेटा आप। उन्होंने इतना कहा ही था कि विहान ने गुस्से में उस दरवाजे पर जोरदार लातें मारी, जिससे अनुपमा जी के साथ साथ बाकी औरतें भी थरथरा गईं। वो घबराई हुई सी उसे देखने लगी, पर विहान ने तो शायद उनकी बात सुनी तक नहीं थी। वो अंदर घुसा और उसने झटके से दरवाजा बंद कर लिया। ये देखकर रश्मि अनुपमा जी सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ी। बाकी औरतें भी इकट्ठा होने लगी और उनके बीच तरह तरह की बातें उठने लगी। वहीं दरवाजे पर लात मारने की आवाज सुनकर अंदर रूम में मौजूद आरवी घबरा उठी और उठकर खड़ी हो गई। जब उसने विहान को अंदर आते देखा तो उसका जिस्म डर से कांप उठा। उस पर जब विहान ने दरवाजा बंद किया तो वो और भी ज्यादा घबरा उठी और अपने थरथराते लबों से उसने हैरानी से सवाल किया, विहान तुम यहाँ, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? उसका सवाल सुनकर विहान उसकी तरफ मुड़ा और उसको गुस्से से घूरते हुए बोला, क्यों मेरे जगह किसी और को यहाँ आना चाहिए था क्या? या तुमने अपने किसी यार को यहाँ बुलाया हुआ था और उसकी जगह मैं आ गया, इसलिए तुम्हें हैरानी हो रही है? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम जानते हो मेरा किसी लड़के से कभी कोई रिश्ता नहीं रहा है। मैं हैरान हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी। मैं किसी और लड़के के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। मेरी शादी तुमसे होने वाली है, फिर तुम मेरे बारे में इतनी घटिया बातें सोच भी कैसे सकते हो? उसके घटिया इल्जामों को सुनकर आरवी भी गुस्से में भड़की। उसका गुस्सा देखकर विहान के लबों पर टेढ़ी मुस्कान फैल गई। उसने उसके तरफ बढ़ते हुए कहा, उफ, तुम्हारी यही अदा तो मुझे तुम्हारा दीवाना बनाती है। उसकी बात सुनकर आरवी ने उसको नफरत से देखते हुए अपना चेहरा घुमा लिया। उसकी इस हरकत को देखकर विहान का चेहरा एक बार फिर गुस्से से तमतमा उठा। वो उसके पास पहुंच चुका था। उसने गुस्से से उसकी बाह पकड़कर उसको अपने तरफ खींच लिया तो आरवी ने घबराकर उसे देखा।